समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
नमस्कार, सुप्रभात। आज सवेरे के संक में मैं हूं आपके साथ फरहत नाज, और आज मेरा साथ दे रही हैं मेरी सहयोगी शगुन चोपड़ा। नमस्कार शगुन।
नमस्कार फरहत, एंड टू आवर लिसनर्स नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड डे एवरीबॉडी। मी शगुन चोपड़ा एंड फरहत नाज, वी वेलकम यू टू आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे। एंड फर्स्ट वील स्टार्ट विद द नेशनल इंटरनेशनल न्यूज।
जी बिल्कुल, सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी खबर से। तो आज 75 वर्ष का जो है जश्न वहां पर मनाया जा रहा है सोमनाथ मंदिर के लिए, तो क्या है खास?
सो लेट्स बिगिन विद इट। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल पार्टिसिपेट टुडे इन सोमनाथ अमृतपर 2026 एज फॉर इट सेट, मार्किंग 75 ईयर्स ऑफ द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव टेम्पल। Mr. Modi will offer prayers to Lord Somnath, perform the Kumbhabhishek ritual, and later address a public gathering. A roadshow has also been organized. So on this occasion, Chief Minister Bhupendra Patel and Deputy Chief Minister Harsh Sanghvi will also remain present. More from our correspondent.
Prime Minister Narendra Modi will arrive Somnath from Jamnagar by air. After landing at the helipad, he will greet the public during a roadshow up to Veer Hamirji Goyal Circle. Afterward, the Prime Minister will pay floral tribute to statue of Sardar Vallabhbhai Patel, who envisioned the reconstruction of the Somnath Temple. Mr. Modi will perform special prayers at the temple and will also conduct the Kumbhabhishek ceremony and flag hoisting on the temple spire. On this occasion, the Indian Air Force Surya Kiran Aerobatic Team will present a thrilling air show in the sky of Somnath. After the worship rituals, the Prime Minister will also address a public meeting. He will release a special commemorative postal stamp and a special 75 rupees commemorative coin. Mayur Solanki, Akashwani News, Somnath.
Later in the day, the Prime Minister will travel to Vadodara, where he will inaugurate the Sardar Dham Hostel around 6 p.m. The project includes hostel facilities for 1,000 boys and girls, along with amenities like a central dining hall, library and auditorium, and this includes 1,000 boys and girls. Mr. Modi will also visit various facilities at Sardar Dham complex, including the reception area, civil amenities, dining area and e-library. The Prime Minister will address the gathering.
और श्रोताओं, अब चुनावी खबरों का रुख कर लेते हैं। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने भारतीय जनता पार्टी के हेमंत बिस्व सरमा को राज्य में नई सरकार का गठन करने के लिए आमंत्रित किया है। असम में एनडीए की ये लगातार तीसरी सरकार होगी। एनडीए विधानमंडल दल का सर्वसम्मति से नेता चुने जाने के बाद श्री हेमंत ने गठबंधन के अन्य नेताओं के साथ लोकभवन में राज्यपाल से मुलाकात की थी और सरकार बनाने का दावा पेश किया था। श्री आचार्य कल श्री सरमा और मंत्रिपरिषद के नए सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह खानापाड़ा स्थित पशु चिकित्सा महाविद्यालय के खेल मैदान में आयोजित किया जाएगा। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित अन्य लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। हाल के विधानसभा चुनाव में एनडीए को 126 सदस्यों की विधानसभा में 102 सीटें मिली थी। भाजपा ने 82 और गठबंधन के दल असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट ने 10-10 सीटें जीती थी।
So listeners, India now ranks third globally in installed renewable energy capacity. A new report by Morgan Stanley says India's renewable energy transition will help reduce external dependence, but its success will depend on how quickly the country localizes critical segments, which include solar cells, wafers and polysilicon. According to data from the Ministry of New and Renewable Energy, domestic solar module capacity has nearly doubled from 38 gigawatts in March 2024 to 74 gigawatts in March 2025. Solar cell capacity has also increased from 9 gigawatts to 25 gigawatts.
उत्तराखंड प्रशासन ने चारधाम यात्रा के श्रद्धालुओं और पर्यटकों से राज्य में खराब मौसम की स्थिति के बीच सावधान रहने तथा सुरक्षा मानकों का पालन करने की अपील की है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के विभिन्न भागों विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में कल और बुधवार को खराब मौसम और बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। गढ़वाल मंडल के आयुक्त विनय शंकर पांडे ने श्रद्धालुओं और पर्यटकों से अपील की है कि वे उन्हें यात्रा के दौरान मौसम के बारे में ताजा जानकारी रखनी चाहिए और सावधानी के साथ यात्रा कार्यक्रम तैयार करना चाहिए। श्री पांडे ने यात्रियों से राज्य में खराब मौसम को देखते हुए 12 और 13 मई को यात्रा कार्यक्रम तैयार करते समय अधिक सजग रहने की अपील की है।
So another update involves Madhya Pradesh Chief Minister Dr. Mohan Yadav will release two cheetahs into the wild at Kuno National Park today. So Prime Minister Narendra Modi launched Project Cheetah in September 2022 by introducing 8 cheetahs brought from Namibia into Kuno National Park. It was the world's first intercontinental big cat relocation project, and this was followed by the arrival of 12 cheetahs from South Africa in 2023 and 9 from Botswana in February this year. So since then, Kuno National Park has seen significant developments. In March 2023, female cheetah Jwala gave birth to India's first cheetah cubs in 70 years. And so far, more than 37 cubs have been born in India, taking the total cheetah population at Kuno to 57. And in November 2025, Mukhi, an Indian-born cheetah, also gave birth to cubs, marking a major milestone in the project. US President Donald Trump has described Iran's latest peace proposal as totally unacceptable as efforts continue to secure a deal to end the month-long conflict in West Asia. President Trump wrote on Truth Social that he has read Iran's response from what he called its so-called representatives and said he does not like it, calling it totally unacceptable. Earlier yesterday, Iran said it has sent its response to the latest United States proposal aimed at ending the conflict in West Asia. The response was conveyed through Pakistan, which has been acting as a mediator between Tehran and Washington. Iran's ISNA news agency said, Tehran's response focuses on ending the conflict and ensuring maritime security in the Strait of Hormuz, a key global oil shipping route. Iranian President Masoud Pezeshkian said that dialogue with the West should not be viewed as surrender or retreat. Meanwhile, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu spoke with President Trump last night after Iran submitted its response to the latest U.S. ceasefire proposal.
शगुन अब खेल खबरों का रुख कर लेते हैं। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 166 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। वहीं भुवनेश्वर कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा।
Now telling our listeners about Asian Weightlifting Championships in Gandhinagar, Gujarat. From today, India is set to host this prestigious 2026 championships, marking the country's first time hosting the event in 44 years. A report.
The grand sporting event beginning today will conclude on 17th of this month. Around 180 athletes from 28 countries will compete in one of Asia's biggest weightlifting events of the year, which also plays an important role in qualification for the upcoming Commonwealth Games and Asian Games. India, China and Sri Lanka will field the largest squads with 16 lifters each, while Chinese Taipei has 15 participants. India's campaign will be led by experienced lifters such as Bindya Rani Devi and Ajit Narayan, along with Nirupama Devi, Lovepreet Singh and Bedra Bharali. However, Olympic silver medalist Mirabai Chanu will miss the championship due to an injury. Competing on home soil, India will aim for a stronger performance after a disappointing outgoing in the previous edition in China. With Rupesh, this is Sanyukta Yadav from Sports Desk.
In football, India's under-17 women's team will play their crucial quarter-final match against host China in the AFC Under-17 Women's Asian Cup at Suzhou Sports Centre Stadium in Suzhou today. A win will seal India's qualification for the FIFA Under-17 Women's World Cup, marking the country's first ever qualification to a FIFA World Cup on merit in women's football.
और श्रोताओं, आज रात 9:30 बजे आकाशवाणी प्रसारित करेगा हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक, जिसका विषय होगा अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरे कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विशेष संबंधित विशेषज्ञों से प्रश्न पूछ सकते हैं। नंबर है 0112331 01 02371717 पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी अपने सवाल पूछ सकते हैं और इसके अलावा #AskAIR के साथ आप एक्स पर सवाल पोस्ट कर सकते हैं। और श्रोताओं, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर, जहां हम रुक करेंगे महानगरों की खबरों का। चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के समाचारों की बात करेंगे। तो शगुन, सबसे पहले चेन्नई में क्या है खास?
Well, yes, the 17th Assembly session in Tamil Nadu with the formation of a new government will begin today. Yesterday, we saw the oath-taking ceremony of C. Joseph Vijay, the CM. The day will begin with all the new MLAs taking oath as pro-term speaker. Karupaya will lead the assembly today. The speaker will be elected today or tomorrow after all members take their pledge. The new government will have to prove their majority before the 13th of this month. Farhat, another update. Where the Bureau of Indian Standards seized 2,870 packs of balloons and 3,000 toys from outlets in Soh Carpet for violating quality control norms. Acting on complaints, BIS carried out the seizure at Ambika Stores, Mahavir Enterprises and Kshetrapal Impex. So the BIS has urged consumers to verify licenses before buying products. Public can verify BIS licenses through the BIS Care app, the BIS portal or by scanning QR codes.
और चेन्नई के बाद अब राजधानी दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली के सभी 13 जिलों में आज एक विशेष सेवा अभियान चलाया जाएगा। इस पहल के तहत जरूरतमंद और बेसहारा लोगों को आश्रम लाया जाएगा, जहां उनके चिकित्सा, उपचार, देखभाल और पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी। 5 दिनों तक चलने वाले इस अभियान को दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग, अपना घर आश्रम और सेवा भारती दिल्ली प्रांत के संयुक्त तत्वाधान से चलाया जाएगा। और इस अभियान के लिए 19 विशेष वाहनों की व्यवस्था भी की गई है, जिसका उद्देश्य 300 से अधिक लोगों तक सहायता पहुंचाना है। वहीं दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधु ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षित, सुगम और सुव्यवस्थित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों से सहयोग की अपील की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि सभी दिल्लीवासी और यहां आने वाले लोग दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करें, ताकि राजधानी को बेहतर यातायात वाला शहर बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि यातायात नियमों का पालन न केवल सड़क पर जाम और दुर्घटनाओं को रोकने में सहायक है, बल्कि वायु प्रदूषण को कम करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने इसे प्रत्येक नागरिक की मौलिक जिम्मेदारी बताया। उपराज्यपाल ने वाहनों की सुनियोजित पार्किंग और हेलमेट और सीट बेल्ट के उपयोग पर भी जोर दिया, ताकि यातायात सुचारू रहे और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
Farhat, in Bengaluru, a special drive was conducted to clear encroachments from footpaths across different municipal wards. The Chief Commissioner of Greater Bangalore Authority, Maheshwar Rao, and Zonal Commissioners visited different wards to supervise the drive. Action was initiated against vendors illegally collecting and disposing waste on the side of the Jakku Railway Parallel Road. A fine of 10,000 rupees was imposed on the persons which were responsible for illegal dumping of waste. A few shop owners were served notices for illegally encroaching on the footpath. The officials were directed to complete the railway parallel road work from Jakur village to Airport Road. A special enforcement drive was also conducted within Bengaluru East City Corporation jurisdiction. A team consisting of 4 marshals, 10 labourers, 3 tractors and 1 JCB machine carried out the operation to clear footpaths so the roadside stalls, push carts and construction materials and the illegal advertisement structures were removed.
और अब महाराष्ट्र की ओर बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में नासिक स्थित विशेष जांच दल SIT राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष रूपाली चकनकर से स्वघोषित धर्मगुरु अशोक खरात से कथित संबंधों के सिलसिले में पूछताछ कर रहा है। SIT का गठन अशोक खरात के खिलाफ दुष्कर्म के आरोपों और उनके राजनीतिक संबंधों की जांच के लिए किया गया है। पुलिस अधिकारी तेजस्वी सतपुते के नेतृत्व में SIT की जांच कल नासिक में महाराष्ट्र पुलिस अकादमी में शुरू हुई। ये जांच खरात के शिवानिका ट्रस्ट में चाकनकर की कथित भूमिका और उनके खिलाफ मामलों को दबाने के लिए पुलिस अधिकारियों पर संभावित प्रभाव डालने के आरोपों से संबंधित थे। वहीं केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आश्वासन दिया है कि उत्तरी मुंबई में कोई भी परिवार बेघर नहीं होगा। सभी पात्र निवासियों के लिए आवास सुनिश्चित करने हेतु एसआरए परियोजनाओं की उचित योजना बनाई जाएगी। ये आश्वासन उत्तरी मुंबई में आयोजित पहली एसआरए जन शिकायत बैठक के दौरान दिया गया। बैठक में एसआरए परियोजनाओं से संबंधित लगभग 150 शिकायतों का समाधान किया गया, जिससे सैकड़ों निवासियों को राहत मिली। निवासियों को संबोधित करते हुए श्री पीयूष गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बिजली, पानी, खाना पकाने की गैस, शौचालय और डिजिटल कनेक्टिविटी की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम किया है।
हेडिंग नाउ टू हैदराबाद, तेलंगाना चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी हैज प्रेज्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज विकसित भारत 2047 विजन फॉर मेकिंग इंडिया अ डेवलप्ड नेशन। सो एट एन इवेंट इन हैदराबाद यस्टरडे ही अनाउंस्ड दैट तेलंगाना एम्स टू अचीव अ $1 trillion इकोनॉमी बाय 2034 एंड $3 trillion बाय 2047। The chief minister noted that Telangana has less than 3% of India's population, which contributes nearly 5% to the national GDP, and the state targets increasing this contribution to 10% by 2047. Yesterday's event marked the inauguration of the Kakatiya Mega Textile Park and various railway projects in Telangana.
और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज राज्य सचिवालय नवन्ना में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शनिवार को मुख्यमंत्री के साथ पद और गोपनीयता की शपथ लेने वाले पांच मंत्रियों के बीच विभागों के बंटवारे की भी उम्मीद है। नए मंत्रिपरिषद की बैठक में भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वायदों को लेकर चर्चा करने की संभावना है। बैठक में आयुष्मान भारत, अन्नपूर्णा भंडार, राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग को लागू करने जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की भी उम्मीद है। मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षकों और विभिन्न विभागों के सचिवों के साथ प्रशासनिक और कानून व्यवस्था की स्थिति की भी समीक्षा होगी। नवनिर्वाचित विधायकों के भी इस बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री सुबह लगभग 11 बजे गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जिसके बाद मंत्रिपरिषद की बैठक शुरू होगी। श्रोताओं, महानगरों की खबरों के बाद अब रुख कर लेते हैं मौसम का। तो सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली के मौसम की। आज बारिश की संभावना यहां पर व्यक्त की गई है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, लेकिन मुंबई में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। कोलकाता में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा।
चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव पार्टली क्लाउडी स्काई। देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ मॉडरेट रेन और थंडरस्टॉर्म। मिनिमम टेम्परेचर वाज 26 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम विल बी अराउंड 34 डिग्रीज। बेंगलुरु इज एक्सपेक्टेड टू हैव पार्टली क्लाउडी स्काई अगेन। मिनिमम टेम्परेचर वाज 22 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम टेम्परेचर विल बी अराउंड 32 डिग्री सेल्सियस। हैदराबाद इज एक्सपेक्टेड टू हैव पार्टली क्लाउडी स्काई and there is a possibility of rain, thunderstorm or dust storm. The temperature, minimum temperature, will be around 26 degrees Celsius and the maximum temperature will be around 38 degrees Celsius in Hyderabad, Farat.
Ji.
And now, let's tell you about the special day. What's special about 11th May? We'll begin with this particular segment. So every year, on May 11, India celebrates National Technology Day. This day honors the successful nuclear test conducted at Pokhran on May 11 and on May 13 in 1998. These tests, collectively known as Operation Shakti, marked a significant milestone in India's technological and scientific capabilities and established the country as a nuclear power.
जी बिल्कुल शगुन, और ये उल्लेखनीय है कि घरेलू स्तर पर भी तैयार एयरक्राफ्ट हंस 3 ने भी इस दिन परीक्षण उड़ान भरी थी, और इसके अलावा इसी दिन भारत ने त्रिशूल मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया था।
विद मल्टीपल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स अकम्पलिश्ड ऑन द सेम डे द इंडियन गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड मई 11 एज नेशनल टेक्नोलॉजी डे।
जी, और इसी दिन भारत दुनिया का 6वां परमाणु शक्ति वाला देश बना था, और इसीलिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे घोषित किया। और अब आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ और इतिहास में दर्ज महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र कर लेते हैं। आज ही के दिन सन 1951 में राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने नवनिर्मित सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन किया।
इन 330 The city of Constantinople was dedicated and then became the capital of the Eastern Roman Empire, and the earliest known performance of William Shakespeare's comedy, The Winter's Tale, was staged on 11th May 1611 at the Globe Theatre in London. In 1812, that the dance from waltz was first introduced in English ballrooms. And Farah, many people, they ride bicycles, right? Mm-hmm. Perhaps many of the listeners as well, we also have done it, maybe still do it. Well, it was on this day in 1893 that Henri Desgrange established the world's first bicycle world record, traveling 35.325 kilometer in just an hour.
जी और बात अगर की जाए 1922 की तो रेडियो स्टेशन केजीयू का आज ही के दिन हवाई में प्रसारण हुआ था.
In 1928, the first ever television station was opened by General Electric in New York.
सन 1956 में गोल्ड कोस्ट को ब्रिटेन के शासन से मुक्त कराने की घोषणा की गई थी. वहीं गोल्ड कोस्ट, जिसे आज हम घाना के नाम से जानते हैं, ब्रिटेन की सरकार ने उसकी आजादी के लिए 6 मार्च 1957 की तारीख मुकर्रर की थी. और 1998 में यूरोप की एकल मुद्रा यूरो का पहला सिक्का आज ही के दिन बनाया गया था. और सन 2008 में न्यूयॉर्क के कार्नेल विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने देश का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड मानव भ्रूण तैयार किया था. तो ये तो थी इतिहास की बात. और अब आइए हम अपने आखिरी सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं, जहां हम याद करेंगे कुछ जानी मानी शख्सियतों को. तो सबसे पहले श्रगुन हम याद कर रहे हैं मृणालिनी साराभाई को. और एक डांस की एक महान हस्ती थी ये, जिन्होंने भरतनाट्यम और कथकली को ग्लोबल स्टेज पर मशहूर बनाया. केरला में जन्मी मृणालिनी ने बचपन में स्विट्जरलैंड में वेस्टर्न डांस की डालक्रूज तकनीकी सीखी, जिसने उनके डांस को एक अनोखी लय और ऊर्जा दी. उन्होंने शांति निकेतन में पढ़ाई पूरी की और मशहूर विक्रम साराभाई से विवाह किया. उन्होंने अहमदाबाद में दर्पण एकेडमी की भी स्थापना की, जिसमें 18,000 से ज्यादा छात्रों को ट्रेनिंग भी दी गई.
वेल राइट फरत, मृणालिनी साराभाई, द क्लासिकल डांसर, कोरियोग्राफर, इंस्ट्रक्टर, शी वॉज द फाउंडर डायरेक्टर ऑफ दर्पण अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, विच इज एन इंस्टीट्यूट फॉर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग इन डांस, ड्रामा, म्यूजिक एंड पपेट्री एज वेल. शी रिसीव्ड मेनी डिस्टिंग्विश्ड अवार्ड्स, साइटेशंस इन रिकॉग्निशंस ऑफ हर कंट्रीब्यूशन टू आर्ट, एंड शी ट्रेन्ड ओवर 18,000 स्टूडेंट्स इन भरतनाट्यम एंड कथकली. नाउ let's listen to an excerpt from an interview which she this is what we found on our Prasar Bharati archive. So let's listen in and listen to her diverse views. Actually, listen in.
Dance, of course, is my main, and movement, I think I've always liked to express through movement, which is through classical dance and also creative work. But I also write a lot and read a lot. My favorite thing is to buy books and read and enjoy so much. I love poetry. So there's so many landscapes of life, and in each landscape one finds something different to inspire. I suddenly am talking about Bharatanatyam, and I remember my childhood and Wordsworth, or I'm talking about reincarnation.
Wow, such diverse views and other areas of contribution besides choreography. More than 300 dance dramas. She has also written many novels, poetry, plays and stories for children as well. So today, listeners, we are also remembering another artist. The name is Bob Marley. Today, it's his death anniversary. So considered one of the pioneers of reggae, he fused elements of reggae and rock steady as well, and was renowned for his distinctive vocal and songwriting style. So the singer-songwriter increased the visibility of Jamaican music worldwide and became a global figure in popular culture. About a thing. Little thing is gonna be all right.
जी बिल्कुल शगुन. और अब आगे बढ़ते हैं, हम याद कर रहे हैं रामाकांत शुक्ला को. संस्कृत और हिंदी भाषाओं के भारतीय विद्वान रहे ये. भारत सरकार ने इन्हें साहित्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 2013 में पद्मश्री से सम्मानित किया. और इसके अलावा 40 साल तक संस्कृत समाचार इन्होंने पढ़े. और इनका मानना था कि संस्कृत मरी नहीं है, सो रही है, उसे जगाना बेहद जरूरी है. इसके अलावा इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, राष्ट्रपति सम्मान संस्कृत विद्वान के रूप में, और वाल्मीकि सम्मान से भी जो है सम्मानित किया गया.
Well, today listeners, we are also remembering Ali Asif Ali, Well, he gave up his practice in the freedom fighter Ali Asif Ali gave up practice in law during the non-cooperation movement in the early 1920s and returned to India from England. So he took part in the nationalist movement and used his legal acumen to help nationalist leaders in courtrooms. So the revolutionaries Bhagat Singh, Sukhdev and Rajguru were defended by Asif Ali. So Asif Ali was imprisoned during the Quit India movement in 1942 and was detained in Ahmednagar Fort Jail. After his release, well, he served as the Minister for Railways in the interim government formed in August 1946. Well, we salute the great Indian.
और अब आइए हम याद कर लेते हैं सागर सरहदी को, जिनका आज ही के दिन जन्म हुआ था. हिंदी सिनेमा के दिग्गज पटकथा लेखक रहे ये. इन्होंने कभी कभी, चांदनी, सिलसिला, नूरी, दीवाना, कहो ना प्यार है जैसी कई बेहतरीन फिल्मों की पटकथा लिखी. एक नाटक प्रेमी होने के साथ ही इन्होंने फिल्मों के लिए संवाद लेखन और निर्देशन भी किया. स्मिता पाटिल की सबसे यादगार फिल्मों में एक बाजार की न केवल सागर सरहदी ने कहानी लिखी बल्कि उसके निर्माता निर्देशक भी रहे. तो आइए सुन लेते हैं फिल्म बाजार से ये प्यारा सा गीत.
दिखाई कैसे खुद किया हमें आपसे भी जुदा कर चले दिखाई.
Beautiful song. So we are telling you about Sagar Sarhadi, the prominent figure in Indian cinema. Well, we know him for his deep storytelling and his famous work as a writer in films, which Farak also told us, Noori, Silsila, Chandani, and his directorial debut, Bazaar Sarhadi. Sarhadi started his career in Hindi films by writing dialogues for Sanjeev Kumra, the starter 1971 film Anubhav, directed by Basu Bhattacharya, followed by Anjaan Rahe.
जी बिल्कुल शगुन. और सागर सरहदी ने रंगमंच की दुनिया में फारूक शेख और शबाना आजमी जैसे दिग्गज कलाकारों को मौका दिया था. उनका नाम उन सितारों में शुमार था जिन्होंने अपने दम पर हिंदी सिनेमा जगत में अपनी एक अलग पहचान बनाई. सागर सरहदी का नाम उन लेखकों में भी शामिल था जिन्होंने अपनी लेखनी से एक बदलाव लाने की कोशिश की. और फिल्म कभी कभी में भी उन्होंने बहुत ही बेहतरीन पटकथा लिखी. तो आइए सुन लेते हैं उसी फिल्म से ये गीत.
मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी चांदनी के हसीन रथ पे सवार. मेरे घर आई ओ, मेरे घर आई एक नन्ही परी उसके आने से मेरे आंगन में खिल उठे गुनगुनाई बहार. देख कर उसको जी नहीं भरता चाहे देखूं उसे हजारों बार, चाहे देखूं उसे हजारों बार. मेरे घर आई ओ.
वाओ. टुडे वी आर आल्सो रिमेम्बरिंग सदाशिव दत्तात्रेय. वेल, Sadashiv was always into acting and did many plays in school and college, and yes, that made him quit singing and focus on theatre. The actor, well, Sadashiv in his young days was also trained as a singer, as I'm telling you, but he was told that his highly nasal baritone would prevent him from being a successful singer. So Sadashiv Dattatre Amrapurkar, his career began in Marathi theatre where he honed his skills both as an actor and then as a director as well.
और शगुन, आज ही के दिन जन्म हुआ था भारतीय प्रशासनिक अधिकारी कल्याण वैद्यनाथन कुट्टूर सुंदरम का. वे स्वतंत्र भारत के पहले कानून सचिव और भारत के दूसरे मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे. इन्होंने 1968-1971 की अवधि के लिए भारत के पांचवें कानून आयोग की भी अध्यक्षता की. वे श्वेत पत्र के मुख्य लेखक थे जिसका उपयोग स्वतंत्रता के बाद भाषाई रेखाओं के साथ खींचे गए राज्यों में भारत के गठन का मार्गदर्शन करने के लिए किया गया था. केवीके सुंदरम को 1968 में दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था.
Well, today there is also Sabrina Carpenter's birthday, the singer, songwriter, as well as an actress. She first gained prominence starring as Maya Hart on the Disney Channel series Girl Meets World. And then she joined Island Records and then released her subsequent first fifth album, Emails I Can Send, and featuring the multi-platinum singles, which includes Feather. And she has won two Grammy Awards for her sixth studio album, Short and Sweet.
They don't understand. So, when I finish, I'm about my business and all.
साथ ही अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि हमें कहना होगा आपसे अलविदा। तो शगुन और फरहत को दीजिए कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की इजाजत। नमस्कार, नमस्कार।